पहला ट्रिप है तो भाई कुछ लोग, उस तो आपको प्रॉब्लम्स आई होंगी भाई, ये रे क्या पंगा ले लिया, कहीं ऐसा मोमेंट भी आया होगा कि यार क्या कर लिया मैंने,
खाना पीना खाया नहीं है, दिवाली की छुट्टी घर आता, खाना पीना खाता, बैठा होता घर फैमिली के साथ, तो मैं पागल हूँ क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा अगले दिन सुबह सुबह वापस जाऊंगा बॉर्डर और घर जाऊंगा सीधा।
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये कितने ड्यूरेशन का था और आपने कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुंचे आप, कैसे किया था पूरा?
इतने एरोगेंट थे कि उन्होंने वापस भेज दिया अपने बॉर्डर पे, वहां से लिखा गया।
तो अफ्रीका की जर्नी में आप एक कमाल के इन्फ्लुएंसर से मिले थे, किली पॉल, जो कि सब जानते हैं, उनसे कैसे मुलाकात हुई आपकी, वो जरा बताइए।
बहुत सारे लोग थे और साथ ही में हर एक दुकान, कोई छोटी से छोटी दुकान हो वहाँ पे एक कार्ड गर्ल लिखा बैठा ही बैठा होगा। अगर
तो क्या कुछ ऐसा मोमेंट था पहले आपके इंटरनेशनल ट्रिप में कि यार आपको लगा ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है थ्रू आउट द ट्रैवल?
तो उस समय क्या हुआ कि मलेशिया में कोरोना हो गया, आउटब्रेक हो गया, जिसके उससे मुझे मलेशिया में 4 महीने क्वारंटीन रहना पड़ा।
तो प्रदीप भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पहले पॉडकास्ट में और बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने टाइम दिया। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, हमारे पहले गेस्ट हैं, तो कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट में आने के बाद में?
मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, और आई होप हम इस पॉडकास्ट में कोई अच्छी बातें कर पाएं और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको इंस्पायर कर पाएं।
बजे इसलिए मैंने आपको बोला है क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन हो रही हमारे उत्तराखंड बेल्ट के लिए बेसिकली, क्योंकि अगर उत्तराखंड से लोग देख रहे हैं हमें इस टाइम पर, वो जानते हैं कि आप ट्रैवल कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड, इंस्पायर कर रहे हैं उत्तराखंड पर, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं आप ताकि लोगों को थोड़ा इंस्पायर हो कुछ अच्छा काम करने के लिए। तो प्रदीप भाई सबसे पहले तो मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, प्रदीप भाई को अगर आप देखते होंगे तो यूट्यूब के जरिए आप जानते होंगे कि प्रदीप भाई साइकिल चलाकर पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं और अभी तक 23 कंट्री करंट पढ़ो अभी तक 23 कंट्री घूम चुके हैं। अब उनका नया सफर शुरू होने वाला है, चाइना, मंगोलिया, रशिया एंड सो ऑन। तो कुछ आने वाले के बारे में बात करेंगे, क्या इनके प्लान्स हैं और कैसे उन्होंने ये 23 कंट्री का प्लान किया। इंडिया में भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट किया था, किसी कारोबार से कम नहीं हुआ बट वो भी काफ़ी अच्छा एक अटेम्प्ट था, उस बारे में भी जानेंगे, थोड़ा सा प्रदीप भाई का बैकग्राउंड भी जानेंगे। तो चलिए प्रदीप भाई सबसे पहले पहला मेरा सिंपल सवाल है कि प्रदीप भाई आप उत्तराखंड में कहाँ से हो और कैसे आपने अपनी ये जर्नी शुरू करी?
मैं उत्तराखंड में गरुड़ बागेश्वर से हूँ और जो जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी जो पढ़ाई हुई है, मैं कुछ टाइम मैंने देहरादून पढ़ाई किया, कुछ टाइम मैंने गांव में पढ़ाई किया, जिससे कि मैं बड़ा घूमते रहा इधर उधर गांव और शहर में। तो 11th-12th की पढ़ाई के लिए मुझे गांव आना पड़ा, जिससे मेरे दोस्त नहीं थे गांव में, तो मैं मोस्टली टाइम अपना मूवीज़ देखने में यूटिलाइज करता था और वहीं से बाहर कंट्रीज़ के मैं वीडियोज़ या जो भी लैंडस्केप्स होते थे वो देखता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि बाहर कंट्री कितनी अच्छी है, मतलब इंडिया में गाँव में हमको उतना कुछ देखना नहीं मिलता है, पर जब दूसरी दुनिया देखते तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कितना अलग है। तो बड़ा मन हुआ कि जाना है। तो वहाँ से एक सपना हुआ कि हाँ दुनिया देखनी है, बाहर की दुनिया देखनी है, पर इतना फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि जा पाएँ, घर वालों से बोल पाएँ। तो बस वहीं से भी मैंने रिसोर्स निकालना शुरू किया कि कैसे जाऊँ। तो वहीं से भी साइकिल मेरी ज़िंदगी में आई कि साइकिल एक चीप वे ऑफ ट्रैवल है और एक बजट वे ऑफ ट्रैवल है। तो वहीं
ये बात कर रहा हूँ 11th-12th में।
हाँ हाँ ये एक्जैक्टली 11th-12th से जब मैंने सपना देना शुरू किया वर्ल्ड टूर का।
तो जो कह रहे हो बहुत सारे अमेरिकन फ्रेंड्स बनाए, ये आप फेसबुक पे बता रहे हो कि?
हाँ एग्जैक्टली, मैं फेसबुक रात उठ रहता था, उनसे बात करता था और एक ऐप है हेलो टॉक, उससे मैं स्पेनिश सीखता था। तो ये कुछ तरीके मैंने जुड़े हैं, या तो मैं टूरिज्म में कुछ पढ़ाई करूँ या लैंग्वेज सीख लूँ या कुछ सिंपल तरीका एचएम कर लूँ, जिससे कि बाहर जाने के ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे।
बेसिकली सारे रस्ते थे जो फाइंड आउट कर रहे थे कैसे मैं
बाहर जा पाऊँ।
हाँ
एग्जैक्टली और अपने सपने जो मैंने देखे थे बाहर में वो पूरे कर पाऊँ।
तो सबसे पहले आपने नेपाल टूर का प्लान किया, नेपाल में आपने एक बेसिकली कैसे तय किया और नेपाल में साइकिल आपने परचेज करी?
अभी क्या हुआ था कि अब 11th-12th में सब कुछ सपने देखने के बाद जो हम सोचते कभी कभी ऐसा चीज़ें नहीं होती हैं। तो पापा ने मुझे बोला कि नहीं, जो भी तुम सोच रहे हो वो कोर्स नहीं करने दूंगा, तुमको बस आईटी करनी है। क्योंकि आपको पता है इंडिया में जो पेरेंट्स की माइंड सेटअप है वो ऐसा है कि एक सिक्योर जॉब, एक ऐसा जॉब कि बच्चों को बस स्टेबल रहे, और जो भी कोई भी हमारे बड़े भैया लोग जो उसमें कुछ कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो उन्हीं पर ज़्यादा बिलीव करना और वही करवाना। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको पता है ये आउटडोर्स ये बहुत नया है इंडिया के पेरेंट्स के लिए, तो कोई माना ही नहीं। तो उन्होंने मुझे करने ही नहीं दिया ना लैंग्वेज कोर्स, ना टूरिज्म कोर्स, ना ये सब कुछ। तो फिर मुझे लास्ट में उन्होंने डाल दिया, बीटेक में डाल रहे थे, बीसीआईटी कोर्स में डाल दिया। तो फिर मैंने वो पढ़ाई की एक सेमेस्टर। उसके बाद मैं इतना बोर हो गया ये पढ़ते, तो फिर मैंने प्लान बनाया क्यों ना मैं कहीं दिवाली की छुट्टी में कहीं बाहर जाऊँ। तो मैंने घर में झूठ बोल के मैंने कहा कि मैं ऊपर पिथौरागढ़ हाइक करने जा रहा हूँ, ट्रैक करने जा रहा हूँ, एक हफ्ते में नेटवर्क से बाहर रहूँगा। और साथ ही मैंने प्लान किया था कि मैं कोई ऐसी कंट्री चूज़ करूँ जो इजी रहे, विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीज़ा चाहिए। तो वो नेपाल और भूटान थी उस समय, तो नेपाल में ज़्यादा पास थी, इसलिए मैंने नेपाल चूज़ किया और मैं सीधा घर में झूठ बोल के मैं काठमांडू, ये बनबसा बॉर्डर इंडिया का जो है वहाँ पहुँच गया। वहाँ से मैंने 7 दिन की जर्नी स्टार्ट की और काठमांडू पहुँचा।
7 दिन की जर्नी,
हर दिन मैंने साइकिल चलाई, और साइकिल उस समय एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी थी क्योंकि मैं साइकिलिंग का शौक भी था, और उससे पहले एक रेस मैंने की थी उत्तराखंड में होती है, तो वो भी की थी 7 दिन की रेस, तो वहाँ से मुझे और हिम्मत मिली साइकिल, तब मैंने फिर शुरू किया लंबे जर्नी के लिए।
नेपाल जब आपने शुरू किया नहीं सीखी बॉर्डर पे आप पहुंचे, आप चले 7 दिन का ट्रैवल था 700 किलोमीटर,
हाँ जी
क्या कैसा एक्सपीरियंस था, क्या क्या देखा आपने वहाँ पे, चैलेंजेस क्या क्या आए, और क्योंकि वो पहला ट्रिप था आपका,
हाँ जी
पहला ट्रिप है तो भाई कुछ ना कुछ तो आपको प्रॉब्लम्स आई होंगी भाई, यार क्या पंगा ले लिया, कहीं ऐसा मोमेंट भी आया होगा कि यार क्या कर लिया मैंने ये।
एक तो ये होता है, ये जब आपको पूरी नॉलेज ना हो किसी चीज़ की, तो आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, पर उसमें एक जोश भी था कि हाँ नहीं चलना चलना, कोई नई कंट्री में जा रहा हूँ। मतलब कि जब आप किसी से किसी कोई आपका सपना पूरा होता है, तो आप उसको एक एनर्जी से करते हो, तो खुशी होती है कि हाँ यार मेरा कोई सपना पूरा हो रहा है, मैं दूसरी कंट्री में आ रखा हूँ। तो मैं बड़ा खुश था, पर रात को एक दिन फंस गया जंगल, पहले दिन ही, क्योंकि पता नहीं होता ना कह सकें किस हिसाब से रुकना पड़ता है, किस हिसाब से कुछ करना पड़ता है, तो जंगल में फंस गया तो और डर लगी। उसमें था कि पागल हूँ, यहाँ घूम रहा हूँ और खाना पीना खाया नहीं है, दिवाली की छुट्टी घर आता खाना पीना खाता बैठा होता घर फैमिली के साथ, तो मैं पागल हूँ क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा अगले दिन सुबह सुबह वापस जाऊँगा बॉर्डर और घर जाऊँगा सीधा।
तो जो जहाँ रात में फंस गए थे वो नेपाल बॉर्डर से नेपाल कितना अंदर था?
वो 110 किलोमीटर आगे कर्नाली जिसा पानी ब्रिज पड़ता है, उससे पहले गाँव था, वहाँ मैं 10 किलोमीटर जंगल में फंस गया था।
कैसे फिर वहां से निकले, कैसे वहां
फिर
पे
वहाँ से एक्चुअली मैंने गाँव वालों से पूछा मुझे रहने दो खाने दो, मुझे भूख लगी है, दिन में सुबह कुछ खाया नहीं है, तो उन्होंने मना किया कि नहीं आगे जाओ आगे जाओ आगे, वहाँ टाउन है चिसा पानी। फिर चलते चलते कोई पीछे से बाइक वाला आया, उसने लाइट दिखा दिखा के फिर वैसे करके आगे पहुंचा, तो उसी मैंने बहुत डरावना और दिन था।
पहला दिन
हाँ
और पहले दिन आपको,
बहुत डर लगी।
फिर आपने अगले दिन कैसे पैशन को क्रिएट करा कि
फिर
नहीं करना है दिन?
रात को मैंने पूरा 100% मेरा प्लान था कि मैं जा रहा हूँ, मैंने होटल वाले को बोला था कि अगले दिन जो सुबह गाड़ी आएगी बॉर्डर की 8 बजे, मुझे रोक के मुझे जाना ही जाना है। जब सुबह उठा था 7 बजे उठा, 8 बजे की गाड़ी थी, 7 बजे उठा, उनने हाथ में चाय का कप दिया, और सामने जैसे बाहर निकला बहुत तेज कर्नाली की हवा, कर्नाली जैसा पानी बहुत फेमस है, ऊपर से कर्नाली रिवर बहती है, तो वहाँ से हवा आती है बहुत ठंडी सी, और सामने एक ब्रिज है जो फ्रेंडशिप ब्रिज है जापान और नेपाल की गवर्नमेंट का, तो वो ब्रिज बनाया है, जो ब्रिज बनाया है वो फुल्ली रिजेंबल करता है अमेरिका के गोल्डन गेट ब्रिज से, जो अमेरिका में गोल्डन गेट ब्रिज है उससे रिजेंबल करता है। तो मैं जो देखा, मैंने कहा ये तो वही ब्रिज है जो मैं मूवीज़ में देखता था, तो मुझे वो वहाँ क्लिक कर गया। तो तब मैंने कहा यार इतना बढ़िया ब्रिज, क्या हवा चल रही है, ठंडा ठंडा सुदिंग हवा चल रही है, मतलब कि ये अगर मैं आगे चलते रहूँगा तो मुझे ऐसी जो मैं देखता था मूवीज़ में वो मेरा सपना पूरा होते रहेगा, तो मैंने कहा कर लिया वहाँ से वहाँ। तो जब वो क्लिक हुआ तब मैंने कहा आगे चलना है, अगर वापस जाऊँगा तो वही वापस ज़िंदगी होगी, और अगर आगे जाऊँगा तो वही डेस्टिनेशन देखने को मिलेंगे जो मैंने मूवीज़ में देखे थे उस टाइम पे, तब फिर मैं आगे चलते गया, ये वो पूरा हो रहा
तो बिकॉज इनिशियल डेज में आपको दो ऐसे पॉइंट मिले जहाँ से आपको, तो पहले तो बैक करने की
है।
वापस आता हूँ
हाँ
ड्रॉबैक,
हाँ
फिर लेकिन नेक्स्ट डे आपको ऐसे इंस्पिरेशन फिर मिल गया एक क्लिक करेगा कि यार चलो भाई लेट्स चेज आर ड्रीम्स, तो फिर उसके बाद कैसे फिर उसका अगले बार फिर अपने नेक्स्ट आपका क्या स्टैंड था?
तो जब नेपाल करके मैं आया तो मैं बड़ा ही खुश था कि यार ये कंट्री हो गई, और जो मैंने किया था उस समय बहुत कम लोग थे इंडिया में भी, इवन उत्तराखंड तो कोई था नहीं उस समय, इवन इंडिया में गिने चुने हैंडफुल लोग थे, 4-5 लोग जो
अच्छा ये कौन से ईयर की बात बोल रहे हैं
ये
भाई आप?
2017 या 2017 की बात थी, जब मैं 16-17 साल का उम्र का था कुछ, तो उस समय मैं बहुत छोटा था, और आपको बताइए कि 18 से नीचे बच्चे कितने पेरेंट्स कितना उन पर वो होते हैं कि कहीं नहीं जाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो वो टाइम था, तो मुझे लगा मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और मैं उस समय अपना सोशल मीडिया में डालता था फेसबुक में फोटोज़, तो लोगों को बोला अरे लोगों को लोग खुश हो गए, चौंक गए कि कैसे किया क्या किया, तुम अब गिनीज बुक के लिए अटेम्प्ट करो, लिंका बुक के लिए करो, कुछ और करो, तो लोगों ने भी खुश हुए, मैं भी बड़ा खुश हुआ। फिर मैं वापस घर आया, जब तो मैं चाहता था कि मुझे लोग मेरा वेलकम करें, स्वागत करें, मैंने बहुत बड़ा अचीव किया है कॉलेज में, पर कोई था नहीं, तो मैंने कहा कुछ आप बड़ा करो इससे लोग मुझे जाने और मैं कुछ अपने ड्रीम को आगे फॉलो कर पाऊँ, तो वहाँ से भी मेरे साइकिल में इंटरेस्ट आ गया। फिर मैंने कहा कुछ आप बड़ा करता हूँ, तभी मैंने कहा कि अब इंडिया पूरा ट्रैवल करता हूँ, फिर इंडिया ट्रैवल करूँगा तो मुझे और लोग जानेंगे और मुझे स्पॉन्सरशिप मिलेगी, जिससे मेरा मेन जो गोल है वर्ल्ड जो मैं वर्ल्ड टूर का वो पूरा होगा। तो मेन गोल था वर्ल्ड टूर और ये सब सीढ़ियाँ थी।
इनिशियल स्टेजेस थे कि नहीं,
हाँ
स्टेप वन स्टेप टू।
स्टेप टू स्टेप। तो जब मैं नेपाल से कर गया तो लोगों ने कमेंट किए मेरे उसमें कि यार आप कोई रिकॉर्ड करो लिम्का बुक के लिए, बेसिकली लिम्का बुक हमारे इंडिया का एक बुक है, रिकॉर्ड बुक है, तो उसके लिए बोलो। तो मैंने कहा कि करना है तो कुछ बड़ा ही करता हूँ जिससे कि मुझे इंटरनेशनल लेवल की रीच मिले, और तो मैंने ढूंढा ढूंढा रिसर्च की, तो मुझे मिला कि गिनीज बुक भी होता है, तो गिनीज बुक के बारे में सुना था मैंने और गिनीज बुक के बारे में मैंने किया, फिर वहाँ से मैंने अप्लाई किया रिकॉर्ड के बारे में, नोट अच्छे मैंने लगाए, पूरा परमिशन ली सब कुछ किया, कार फंड के लिए कुछ घर से मांगा, कुछ इकट्ठा किया, कुछ ऐसा करते करते फिर मैं अपने जर्नी में निकला।
जो ये आपका इंडिया का था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का, ये कितने ड्यूरेशन का था, और आपने कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुँचे आप, कैसे गया था पूरा मुझे थोड़ा बताइए।
ये मैंने शुरू किया था उत्तराखंड देहरादून से और ये ख़त्म हुआ वापस देहरादून में, ये पूरी एक जर्नी थी जो एक कोने से स्टार्ट होती है और वापस उसी कोने में मिलती है। तो गिनीज बुक का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि हाँ ये जर्नी कंटिन्यूस जर्नी होनी चाहिए, मैंने कंटिन्यूस 160 दिन साइकिलिंग की और 18,000 किलोमीटर्स साइकिलिंग की, तो उस समय रिकॉर्ड था 15,000 किलोमीटर्स का, मैंने उसको ब्रेक भी किया था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर कुछ बाद में कुछ कारणवश गिनीज के कुछ ऐसे रूल्स प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपको एक हफ्ते के अंदर अगर आपको उनसे जवाब या रिकॉर्ड क्लेम चाहिए तो आपको उनको रुपये देने पड़ते हैं $1,500। अगर आपको एक्सप्रेस सर्विस चाहिए, अगर नहीं लेते हो उस पर पैसे थे नहीं मिला उसके मैं दे पाऊँ, तो आपका 4 महीने में रिप्लाई आता है। तो फिर होते होते मेरा रिकॉर्ड बाय द टाइम 4 महीने के टाइम कुछ डॉक्यूमेंट देते देते वो रिकॉर्ड पीछे उन्हें ब्रेक कर दिया, तो इससे मेरा रिकॉर्ड क्लेम नहीं हो पाया।
मतलब लेकिन आपने जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी या जो किलोमीटर्स थे
सब कुछ मैंने पूरा किया था। इवन हमारे नेशनल जो अखबार हैं उन्होंने पूरा कवर किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया, हर चीज़ ने कवर किया था, पर कुछ जो पैसे की वजह से मेरा चीज़ अटक गई उस समय, जो मेरे पास उस समय सुविधा ही नहीं थी।
बट लेकिन आपने एक्सपीरियंस तो जबरदस्त गेन किया हुआ, कहाँ 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 गए थे?
मैं उस समय पूरे जो 29 स्टेट में 26 स्टेट मैंने पूरे ट्रैवल किए थे।
और कैसे पूरा आपने साइकिल पे किया, कैंपिंग करी?
पूरा साइकिलिंग साइकिल से किया, पूरा अपने यहाँ टेंट रखता था, मैं टेंट में से रहता था कहीं भी, और कहीं होटल में, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे होटल लेता था, ऐसे करके पूरा ट्रैवल किया। बाकी हमारे जो लोग थे इंडियंस लोग यहाँ पे, जो भाई उत्तराखंड के लोग जो मुझे जानते थे उस समय कर रहा है, तो मुझे इन्वाइट करते थे तो मैं क्या रहता था।
तो प्रतिभा अभी हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हुआ ये, तो अभी तक तो आप नेपाल इंडिया मतलब नेपाल और उत्तराखंड में रहते हो आप, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से वो एक जैसा ही हो गया, कल्चर भी एक जैसा है पहाड़ वहाड़। फिर आप इंडिया गए तो इंडिया में भी एक अपनापन ही है, हमें पता है कि यार इंडिया है, चलो थोड़ा बहुत वहाँ कल्चर डिफरेंस आता है, लैंडस्केप डिफरेंस आता है, बट स्टिल हम लोग सेफ जोन में अपने इंडिया में। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि आपके भाई आपने इंटरनेशनल कैसे प्लान किया, वो कौन सा ईयर था, और साइकिल से करने का आपने तय कर लिया कि भाई मैं साइकिल से ही अब अब्रॉड भी जाऊँगा, तो ये मुझे थोड़ा बताइए कैसे आपने तय किया, कैसे हुआ?
वही जैसे मैं बोल रहा हूँ कि साइकिल मेरे साथ जुड़ गई थी, क्योंकि साइकिल एक चीप वे ऑफ ट्रैवल और उसमें ज़्यादा ज़्यादा सोचना ही पड़ता है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, तो वही साइकिल उस वजह से वे साथ में थी। और साथ ही मैं बाहर जाने का क्यों सोचा, सिंपली मेरा सोच से प्लान था कि मैं जाऊँ और दुनिया देखूँ, तो इसीलिए मैंने वर्ल्ड टूर का सोचा और नेपाल इंडिया टूर देन एशिया टूर देन, मतलब कि इसके मिले ये सब ये स्टेप्स बाय स्टेप मैंने किया था, कुछ किया। तो मैंने अपना छोटे से गाँव से शुरू किया, देन पूरा उत्तराखंड किया, देन नेपाल गया, देन पूरा इंडिया गया, उसके बाद बता था कि एशिया जिस कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं, तो उसके बाद मैंने एशिया का टूर स्टार्ट किया जो मेरा वर्ल्ड टूर का पहला फेज था। तो एशिया का मैंने स्टार्ट किया इंडिया से, नेपाल होते हुए अगेन नेपाल से भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम होते हुए मैं मलेशिया तक पहुँचा। तो यही पूरी कंटिन्यूस जर्नी है और पूरी लाइन से कनेक्टेड है, तो साइकिल से जाना ईजी रहता है बॉर्डर टू बॉर्डर, तो फ्लाइट मैंने कभी मैंने लिए उसी चक्कर में। और प्लानिंग्स की बात करूँ तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, इंटरनेट में ब्लॉग्स देखने पड़ते हैं, ब्लॉग्स पढ़ने पड़ते हैं, और बाकी में आपको हर एक कंट्री की एडवाइजरी देखनी पड़ती है कि इंडिया और उस कंट्री का रिलेशन कैसा है, मीज़ा भी टर्म्स में कहता है, तो सब रिसर्च करने के बाद उस समय वहाँ कैसा क्या है सब कुछ देखने के बाद फिर वीज़ा कौन से वीज़ा अपने होम कंट्री से लेके जाना है, कौन से वीज़ा आपको ऑन द वे ऑन अराइवल मिल जाएंगे, कौन से वीज़ा आपको ई वीज़ा मिल जाएंगे, सब रिसर्च करने के बाद फिर आप मैंने फिर उसके बाद स्टार्ट की।
ये तो टेक्निकल पार्ट है कि यार कि हमने वीज़ा और ये सब चीज़ें तैयारी करनी है सब। तो जब आपने एशिया का प्लान करा तो आपका जो सपना था आपने 12th में देखा था वो अब ऑलमोस्ट आप तैयार थे शुरू करने के लिए, यानी आप इंडिया के बॉर्डर मतलब इंडिया नेपाल को भी छोड़ते तो वहाँ से आप इंटरनेशनल टूर पर जाने वाले थे, तो कैसी एक्साइटमेंट थी? और जब आपने पहली कंट्री क्रॉस करी तो जो बॉर्डर क्रॉसिंग होती थी वहाँ पर आपकी क्या घबराहट होती थी, क्या कुछ एक्सपीरियंस ऐसा मिला आपको देखने को भाई कि यार ये तो कुछ अलग चीज़ हुई मेरे साथ में?
एक्जैक्टली, तो इंडिया नेपाल तो था बॉर्डर क्रॉसिंग कोई दिक्कत नहीं होती, ना कोई चेकिंग ना कोई ज़्यादा स्टैंपिंग, अच्छा होता है बस अपना आधार कार्ड दिखाओ और आप क्रॉस कर लो, बहुत फ्रेंडली रिलेशन है हमारे नेपाल के सामने। उसके बाद पहला बॉर्डर भूटान भी हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, तो ईजिली आप वहाँ पे इवन विदाउट वीज़ा आप जा सकते हो, बस आपको एक वहाँ पे परमिट लगता है, तो वो भी बहुत अच्छा फ्रेंडली कंट्री थी और पहाड़ी कंट्री है तो हमको अपने ऐसा लगाओ। साथ ही मैं म्यांमार में भी पहली ऐसी कंट्री जहाँ पे कुछ एकदम से कल्चर शॉक कल्चर डिफरेंट बहुत ज़्यादा लगा।
खैर
जैसे मैंने म्यांमार का बॉर्डर पास किया पहले सब कस्टम क्लियरेंस चेक वगैरह सब सामान चेक पूरा स्टैंपिंग वीज़ा सब कुछ चाहिए था प्रॉपर वैलिड जो चाहिए होता है। उसके बाद से मैंने म्यांमार पास किया वहाँ पर टोटली डिफरेंट लैंग्वेज, कोई हिंदी नहीं जानता है बॉर्डर पर,
अच्छा
तो वहाँ पर क्या दिक्कत मुझे हुई कि उसने जो वहाँ पे बैठे थे बॉर्डर पर जो ऑफिशियल्स बैठे थे उन्होंने मुझे ऑफिस भेज दिया कि जाओ तुम साइकिल लेके क्यों आ रहे हो, पहले इसका परमिट लाओ ये लाओ। मैंने कहा कि इसका परमिट कस्टम क्लियरेंस होता ही नहीं था, वो इतने एरोगेंट थे कि उन्होंने वापस भेज दिया अपने बॉर्डर पे वहाँ पे इंसान वहाँ से लिखा गया, फिर वहाँ से जो हमारे उस समय वहाँ पे बैठे थे ऑफिशियल इंडियन साइड पर उन्होंने लिख के दिया कि हाँ इसमें कुछ कस्टम नहीं होता है, हमने उसको वो देखो करके फिर जाके उन्होंने मुझे एंट्री दी। तो पहली बार वो मेरा एक एक्सपीरियंस था बॉर्डर पास किया, मुझे पहली बार वो अजीब लगा मैं ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैं अकेले कस्टम क्लियरेंस यही होता मुझे क्यों भेजे, तो उस समय क्या होता था क्या राय हूँ मैं, तो वो वाली बातें हैं। और तो फिर म्यांमार ऐसे पहुँचे तो वहाँ पे एकदम डिफरेंट कल्चर डिफरेंट खान पान हर चीज़ डिफरेंट, तो वो मुझे बहुत अलग लगा और स्टार्टिंग में मेरा मुश्किल लगा था खाना पीना, पर जैसे जैसे मैं आगे थाईलैंड लाओस आगे गया तो बड़ा अच्छा लगा, फिर मैंने पैसे एडिट करना शुरू कर दिया।
तो वो आपका इनिशियल था और फिर थोड़ा मज़ा भी आने लगा,
मज़ा आया।
तो जैसे ही आप जैसे बॉर्डर क्रॉस करते हो, जैसे मैं हम बेसिकली जो नॉर्मली लोग ट्रैवल करते होंगे, हमने फ्लाइट से गए, हमने फ्लाइट के पोर्ट में अपने उतरे, वहाँ पर अपने पेपर वेपर्स दिखाए और हम क्रॉस कर गए अपना वीज़ा जो भी हो। बट बॉर्डर क्रॉसिंग मुझे लगता है वो एक बड़ी अलग किस्म की एक्सपीरियंस है, जो 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 आर्मी वाले बॉर्डर क्रॉसिंग होता है मूवीज़ में हम देखते हैं, वो क्रॉसिंग हम मुझे लगता है थोड़ी अलग होती है, जो जो हम एयरपोर्ट के बॉर्डर क्रॉस करते हैं।
जो वन डिफरेंट होती है इस साइड बीच में वो से एक रिवर होती है,
अच्छा,
या फिर बीच में नो मैन जोन होता है 3-4 किलोमीटर का, तो दो साइड फेंसिंग होती है, या फिर बीच में रिवर होगी, इस साइड फेंसिंग होगी, या बीच में फ्रेंडशिप ब्रिज होगा, और यहाँ से भी यहाँ पे इंडिया का गेट, यहाँ पे इंडिया का चेक पॉइंट होगा, वहाँ पे सिर्फ इंडिया चेक पॉइंट होगा, तो यहाँ से जाओगे वहाँ पे आके यहाँ से आपका एक्सिट होता है, वहाँ पे आपकी एंट्री होती है, एस टाइम लगता है, तो जाके वो होता है, तो जरा जी अलग था और जरा अच्छा अलग पाई था कि अंदर से अच्छा आता है कि हाँ ये देखने को मिल रहा है, और इतना कोई डिफरेंस नहीं होता है। बाकी जब आप अपनी कंट्री जहाँ पे आपका नेट चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, कॉल चल रहा है, सब कुछ आपका बिल्स आके नॉट चल रहा है, पैसे चल रहे हैं, एक लोग सब दूसरी दुनिया और से आप आपको कुछ गली क्रॉस थी, इसके बाद आपका हल्का सा आप नेटवर्क आते हैं, उसके बाद ऑलमोस्ट सब बंद हो जाएगा, आपका सिम नहीं चलेगा, आपका आपका ऑलमोस्ट सब चीज़ आपकी उसी नया मौजूद होगी, तो हम भी आपको अगेन आपको सब कुछ नया सिम लेना है, नया करेंसी चेंज करनी है, तो सब कुछ नया करना पड़ता है, तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, ये बड़ा अच्छा लगता है।
तो पहला जो आपने वर्ल्ड टूर किया उसमें 9 कंट्रीज करी, तो 9 कंट्रीज में जब आप जा रहे थे, कोई ऐसा एक इंसिडेंट बताइए जहाँ पर आपको लगाओ कि यार ये क्या होता है कि जब भी हम किसी ट्रिप में जाते हैं हमारा एक या दो ऐसे मोमेंट होते हैं जो मुझे लगता है कि यार ये तो मुझे बेस्ट मिल गया अपने ट्रिप का, तो क्या कुछ ऐसा मोमेंट था पहले आपके इंटरनेशनल ट्रिप में कि यार आपको लगा ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है थ्रू आउट द ट्रैवल?
ट्रैवल करता तो आप ऐसे लोग मिलते हैं, म्यांमार बहुत ही अनस्टूड कंट्री है, बहुत ही कम लोग जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि मोस्टली लोग बाली या फिर थाईलैंड ही घूमते हैं, पर म्यांमार ऐसी कंट्री यहाँ पे मैं गया, ये लगा कि क्या जो होगा यहाँ पे, पर जब वहाँ पे क्या वहाँ के लोग इतने वेलकम, इतने फ्रेंडली, वहाँ जो लैंडस्केप इतना ब्यूटीफुल, लेक्स इतना ब्यूटीफुल वहाँ पे, मतलब कि मैं बड़ा खुश हुआ म्यांमार पहुँच के, बुद्धिस्ट कंट्री है, बहुत ही फ्रेंडली लोग, और इवन वहाँ पे इंडियन ऑरिजिन के लोग भी थे, नेपाली ऑरिजिन के लोग भी थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो नेपाल जैसी कंट्री में मुझे बड़ा अच्छा लगा, और इंडिया जैसे बॉर्डर पास करते थे, ऐसा फ्रेंडशिप बॉर्डर पास करते हमें पता है इंडियन फ्रेंडशिप ब्रिज, और ब्रिज जब बन होता है आज जा रहा हो क्या जो हो रहा है, तो एक अलग फीलिंग होती है, बहुत अलग फीलिंग होती है, फर्स्ट टाइम आप सोचते हो रहा है एक्चुअल में, तो वो अलग फील की मैंने, उसके बाद चलते चलते उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वहाँ तो अच्छे मिले, और बहुत अच्छा वही लगा, तो मुझे तो अच्छा लगा वहाँ पे, वहाँ के रॉयल पैलेस देखने को मिले, वहाँ के मतलब कि वहाँ के जो कंट्री का जो हेरिटेज है देखने को मिला, तो बड़ा स्पेशल मोमेंट आ रहा है ये
पूरी ट्रिप में। ये तो अपने अच्छी बात है, कोई ऐसी बात हुई जहाँ पूरे ट्रिप में, इंटरनेशनल ट्रिप की बात कर रहा हूँ, कोई नेगेटिव चीज़, कोई स्कैम हो गया, कोई धोखाधड़ी हो गई, या फिर कुछ ड्रावना हो गया, पुलिस के साथ कुछ काउंटरफिट हो गया, कुछ मतलब समझ में कुछ ऐसी चीज़ हुई?
एक्चुअली अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा अपना सेफ रूल लेके चलता हूँ, हमेशा टाइम पे पहुँचना, टाइम पे स्टार्ट करना, मैं कहीं पे भी रिस्क नहीं लेता हूँ। जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आप बहुत चीज़ ट्रैवलिंग के जो एथिक्स होते हैं, ट्रैवलिंग के जो वो होते हैं रूल्स होते हैं कि हाँ अगर आप उसके अंदर ट्रैवल करोगे तो आपको एक सेफ जोन में रहोगे, तो वो हमें ना फॉलो पड़ा, क्योंकि मैं मेरे को ग्रुप में नहीं हूँ, तो हमेशा सेफ टाइम पे सेफ होता हूँ, तो मेरा अरे भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हर कंट्री में जो रूल्स होते हैं, इसी टाइम पे कंट्री छोड़ना, इसी टाइम पे कंट्री में आना, तो कभी मैं ऐसा नहीं हुआ है, मैं फॉलो कर रहा हूँ, और स्टैम तो होते रहते हैं, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग के लोग हैं, तो कहीं आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपसे बहुत फ्रेंडली रहेंगे और आपको कुछ सामान वामान उठा लेंगे, तो ऐसा स्टैम छोटे मोटे हुए हैं, मेरा अफ्रीका में हुए हैं, मलेशिया में हुए हैं, बहुत हुई है,
मतलब बेसिकली कोई बड़ा ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ लकीली?
एग्जैक्टली ऐसा कोई बड़ा एक्सीडेंट या बड़ा एक्सीडेंट नहीं होगा, इससे मुझे कोई जर्नी खत्म करनी पड़े या मुझे कैसे बहुत हारना पड़े।
ये आपका पहला कंट्री, मतलब पहला 9 कंट्री का जो कॉन्टिनेंट था वो काफ़ी मज़ेकार रहा
सही है, और ऑब्वियसली बहुत मज़ेदार रहा, बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे कंपेनियन साथ में रही, और तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब स्टार्ट किया था कि मैं बड़े बड़े कंट्री में जाऊँगा, अमेरिका, लंदन, जापान, पर जब मैंने ये 9 कंट्री स्टार्ट किया उसके बाद मेरी मेंटेलिटी टोटली चेंज हो गई, मैं पहले मैंने बोलता कि बस मुझे बड़े गलती बहुत है, जो बड़े बड़े जो मैंने मूवी देखी थी, पर जब मैं कंट्री 9 कंट्रीज से मेरा मन बड़ी कंट्रीज में अब कुछ चिंता वो नहीं रहा है, पहले मैं बोलता कि मेरे को जाऊँगा बस वही देखूंगा, पर अब मेरा कोई इतना शौक नहीं कि मैं वही जाऊँ, मेरा मन पूरा वर्ल्ड
198 कंट्रीज आपने बताया था
पूरा वर्ल्ड मुझे अब देखना है, बस मैं एक कंट्री में नहीं रहना चाहता हूँ, अब मैं पूरा वर्ल्ड देखना चाहता हूँ, स्टार्ट हुआ था एक पर्टिकुलर लोकेशन देख के, पर आप पूरा वर्ल्ड ही मैं देखना चाहता हूँ।
तो ये था आपका पहला वर्ल्ड टूर का, सॉरी वर्ल्ड टूर का पहला पहला एक सेक्शन कह सकते हैं, पहला पार्ट। फिर इसके बाद क्या आपने तय किया, कौन कौन सी कंट्रीज का क्या प्लान था फिर आपका?
तो एक्चुअली मुझे उसी जर्नी में मुझे आगे जाना था, मलेशिया से आगे सिंगापुर होते हुए पूरा चाइना, जापान चाइना करते हुए मुझे जाना था, सिल्क रोड से लंदन जाना था, तो उस समय क्या हुआ कि मलेशिया में कोरोना हो गया, आउटब्रेक हो गया, इसके वजह से मुझे मलेशिया में 4 महीने क्वारंटीन रहना पड़ा, 2020 में आउटब्रेक 2020 में मैं मार्च में मैं वहाँ पे चार महीने क्वारंटीन रहा, मार्च आई, मार्च से लेके जुलाई तक।
वो कैसा रहा है पूरे, जब खबर तो आपको मिली गई होगी पूरे वर्ल्ड में आउटब्रेक हो गया कोरोना का, तो मलेशिया में थे उस टाइम पर आपको, आपको न्यूज़ मिली, आपको फ्लाइट, आपकी फ्लाइट थी कुछ ऐसा कुछ?
हमें फ्लाइट भी थी नहीं, फ्लाइट कैंसिल हो गई नया, तो फिर मैं हम एयरपोर्ट पर फंसे रहे एक दिन, वहाँ पे फिर एम्बेसी आई, एम्बेसी ने हमको
ओके,
में कुछ सपोर्ट किया।
तो प्रदीप भाई आपको मालूम पड़ा कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, आप मलेशिया में हो, आपको ये पता नहीं है कि भाई आगे क्या होने वाला है, अब आप विदेश में हो, अब आपको कैसे वहां से कैसे निकले, क्या हेल्प मिली आपको? को
तो वही एक जरा सा बड़ा ही ये डरावना मोमेंट था कि हाँ क्या होगा, मैं जाऊँगा नहीं जाऊँगा ऐसा, और सब छोटा ही रहा, 19-20 साल का ही था। तो पर ये था कि आज इंटरव्यू में जब मैं ट्रैवल करता तो हमारे जो भी लोग जानते थे स्पॉन्सर्स बोलते हैं, या फिर जो भी लोग मुझे उतारना चाह रहा था, उतारने लोग मुझे देखते थे उस समय, तो वो लोग मेरा बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, जो भी उसमें मलेशिया में थे या सिंगापुर में थे, उनने बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने लगा आपको दिक्कत नहीं होगी, जान भी होगा हम आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे पीछे से, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। तो मेरा एक सेफ साइड भी था।
ये तो कम्युनिटी सपोर्ट चलो आपको मिल गया एक कम से कम, लेकिन क्या आपने बताते गवर्नमेंट ने काफी आपको वहां पर हेल्प करा?
तो पहला जो सपोर्ट रहता है वो हमेशा गवर्नमेंट का रहता है, गवर्नमेंट वहाँ पे एम्बेसी होती है कंट्री में, तो एम्बेसी से आप बताओ कि मुझे दिक्कत हो रही है, मेरा पासपोर्ट गुम, कुछ भी चाहे वो आप कोई भी दिक्कत है, चाहे आपका पासपोर्ट गुम हो जाए या आपको कोई भी यहाँ पे कोई चैकिंग थ्रेट कर थ्रेटिंग कर रहा है, तो आप एम्बेसी से बोल सकते हो, वो आप पूरा हेल्प करेगी आपको। तो वहाँ पे उन्होंने पूरा हेल्प किया, पूरा वहाँ से रेस्क्यू करने के बाद हमको एक सेफ जोन में ला के स्टे करवाना और पूरा फूडिंग प्रोवाइड करना, तो ये सब हमारा एम्बेसी था। वियतनाम में, वियतनाम से ही इसके अलर्ट आना शुरू हो गए थे,
हो
पर जो
गया
फाइनल वर्ल्ड का पूरा लॉकडाउन होने लगा था वो हो गया था मार्च में, मार्च 13 से 23
हाँ
को,
करेक्ट
तो
कर
उस समय
उसी।
मैं था मलेशिया में,
ओके ओके,
वही जाना
तो
सिंगापुर।
मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, जब उस टाइम आप वहाँ पे थे तो इस टाइम पर हम यहाँ पर अपने इंडिया में थे, तो मास्क लगे रहे थे, गलियों में लोग निकलने नहीं दे रहे थे, तो क्या वहाँ पर भी ऐसा कुछ सीन था? तो हम तो यहाँ काफ़ी डर रहे थे, तो आपको क्या डर लगा नहीं? मैं
जब आप किसी निकल गए हो ना, जब आप बोल कुछ डिफरेंट होता है, छोटी मोटी चीजें होती हैं, मुझे लगा था आप इन्फेक्ट हो जाओ, कुछ मत मानूंगा, पर ये था कि जब आप एक बोल होते हैं तो आप सोचते नहीं हो, मुझे वो बोलते कि मैं आ रहा हूँ कोई लूट लाटने का, कोई मार मुड़ देगा, तो हम जब आप एक बोल अगर आपको पाने के लिए मेहनत करते हो, तो आपको ये जो छोटी मोटी चीज़ें होते हैं अतरे आपको सेफ रहना है, वो तो पहली पहली प्रायोरिटी है, पर आपको उसे डर नहीं है तो फिर आप स्टार्टिंग ही कर रहे हो, तो आपको मैंने सेफ रहना है, पर ये भी इतना सोचोगे तो आप कभी कहीं नहीं पाओगे।
सही हुआ। तो गवर्नमेंट ने आपको 4 महीने के लिए वहाँ पर पूरा सपोर्ट किया, वहाँ पर रहना खाना पीना सब दिया, एंड देन फ्लाइट आपको अरेंज वापस की कैसे करेंगे?
फ्लाइट फिर यहाँ पे वंदे भारत मिशन चल रहा था, उस समय भी हमने फ्लाइट टिकट खुद अपने पैसे से ली और हम इंडिया आए।
यू आर सेफ इन मलेशिया, गवर्नमेंट ने आपको फुल सपोर्ट किया, तो वो एक मेरे ख्याल से आपके पूरी, मेरे ख्याल से आपको जो पूरा जर्नी रहा होगा ये वाला मेरे ख्याल से थोड़ा सीरियस है, आप शायद इसको बड़ी आसानी से झेल गए करने।
मुझे आगे लोग वेट कर रहे थे, आगे भी जाने के लिए मैं वेट कर रहा था, तो पर वो फोन अभी गेट सादा चला ही चला नहीं गया, तो फिर मुझे गेट सादा घर में रहना पड़ा।
तो ये हो गया कोरोना का पहला, तो वापस आ गया पहले टूर के बाद। फिर आपने अगली टूरिंग कैसे शुरुआत करी, कैसे अपना अगला टूर चला आपका?
उसके बाद ये था कि अभी जो वहाँ से आगे का प्लान था सिंगापुर से जापान चाइना होते हुए सिल्क रोड का, वो तो उसमें बंद था, क्योंकि इसमें चाइना और जापान और सिंगापुर जैसे ज़्यादा इन्फेक्टेड कंट्रीज में थी
अच्छा
और रेड अलर्ट भी थी, तो वहाँ पे वो ये तो आप दोनों फुराई नहीं अपना बॉर्डर्स, और उस समय दुनिया का दूसरा छोर था वहाँ पे था अफ्रीका, जो बहुत ही कम इन्फेक्टेड था और बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन में नहीं था, तो मैंने फिर पूरा वर्ल्ड पे चेक किया कहाँ पे जा सकता हूँ अभी, क्योंकि अभी वेट करता रहा ये अपने जगह को यहीं से स्टार्ट करने के लिए सिंगापुर से ही, तो मैं तो 3-4 साल में बैठ जाऊँगा, मेरी एज तो होती होती रहेंगी, मैं टारगेट भी था कि मुझे 30 तक यंगेस्ट एज तक मुझे वर्ल्ड भी ट्रैवल करना है, बट फिर 2 साल ऑलरेडी पे वेस्ट हो चुके थे, क्योंकि कोरोना के चक्कर में कहीं जा नहीं सकना। जब खुला अब इंडिया में, उसके बाद वो जो जो रास्ता था मेरा मेन एशिया वाला वो बंद था, तो हम चाहते कि मुझे स्किप करना पड़ा मैं एशिया वाला जंप, और मुझे जंप करना पड़ा अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका उस स्टेपस कॉन्टिनेंट था, और मैं उस समय से मैंने अफ्रीका के बारे में पूरा नोट पूरा डिटेल निकाली सब कुछ किया और मैं पहुँच गया के यहाँ।
ईस्ट अफ्रीका से सदर्न, क्योंकि पहले भी ना हो उसके बाद भी ना हो।
हाँ इसमें नॉन ही थे, उसमें भी मैंने फ्लाई करते हुए फिर मैं यूएई भी गया, तो 10 कंट्रीज
टोटल 10 कंट्री आपने गई, तो अफ्रीका तो बहुत ही अलग एक दुनिया है।
अफ्रीका। फिर अभी उन्होंने कि जो लोग सोचते हैं इंडिया में या टीवीज में तो वैसा भी है, पर उसके जब आप हकीकत निकलोगे तो आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी, बहुत लंबे लंबे बियर्ड हैं, जानवर हैं, तो वहाँ पे ऐसा डर है, ट्रैकिंग कैसे करोगे, तो ऑब्वियसली बात है, पर एक ट्रैवलर होना मतलब कि आपको हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करना, हर एक रिस्क को झेलना है, हर एक जो आप ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन करना, वो आपको एक ट्रैवलर बनाता है, नहीं तो आप ऐसे टूरिस्ट पूरे पूरे सपोर्ट के साथ पूरी गाड़ी लेके जा सकते हैं, तो वो एक टूरिस्ट होता है, तो अगर आपको ये सब कुछ फील आ रहा था, अगर आपको आपको घुलना नहीं आया, सब जानना है, तो आपको जाना पड़ेगा, तो सब मैंने तो कुछ छोड़ छोड़ के रिसर्च करके सब कुछ लगा नहीं, पर ये है कि ट्रेवलिंग के बेसिक एथिक्स सेफ जोन में कैसे रहना है वो मैंने हमेशा फॉलो किया, तो मुझे अब तक कोई दिक्कत नहीं हुई।
तो मुझे लगता है कि सबसे पहला रूल आपका यही है कि जो ट्रैवलिंग का बेसिक एथिक है उसको आप फॉलो करते ही करते हो।
एक्जैक्टली तो चाहे मैं हो चाहे कोई भी ट्रैवलर हो उसको ये फॉलो करना चाहिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो।
चलिए इसके एथिक्स हम आखिरी में पूछेंगे वीडियो गेम में, बट मैं अभी जानना चाह रहा हूँ कि जब अफ्रीका में आप गए तो अफ्रीका का जो जो कल्चर है, अफ्रीका की जो जो वाइल्ड लाइफ है बहुत है, अलग अलग है और पूरी दुनिया देखने भी जाती है उसके अलावा, लेकिन मैंने क्राइम का बड़ा सुना है, तो क्राइम के साथ आपको कैसे आपने डील किया या आपको क्या देखने को मिला, कैसे आपने क्या चीज़ करी? जैसे आप मुझे बता रहे थे बैक स्टेज अभी कि केनिया में आप जा रहे थे तो वहाँ पर हर जगह गनर गनर होते थे एटीएम में,
वही
वो तो वो सारी चीज़ें क्या
वो केनिया, जब मैं केनिया पहुँचा तो जब हम मार्केट घूम गए तो बहुत डेंस था मार्केट, बहुत सारे लोग थे और साथ ही में हर एक दुकान, कोई छोटी से छोटी दुकान हो वहाँ पे एक कार्ड दर्ज लिखा बैठा ही बैठा होगा, अगर कोई बैंक वहाँ पर दो या तीन गनर बैठे होंगे। तो मैंने पूछा क्यों है ऐसा, तो उन्होंने बताया कि केनिया में दिन दहाड़े लूट जाती है, लूटपाट हो जाती है, तभी जाती है, ये सेफ्टी उसके लिए है। तो एक ज़्यादा डिफरेंस था, अरे इंडिया में कोई कहीं बैठा नहीं रहता है सब एटीएम के आजकल, कहाँ बैनर कहाँ बैठता ही नहीं है। तो पर अफ्रीका मैंने ये केनिया में देखा तो वहाँ पे जगह से ये रुका था, पर जब मैं वहाँ से बड़ी 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 सिटीज़ में है ऐसा क्राइम, जैसे आप निकलते हो केनिया से बाहर डिफरेंट सिटी में, वहाँ पे इतना दिक्कत नहीं है, पर ये डर था मन में, पर ऐसा है कि मैंने दरअसल में कुछ हुआ नहीं, मैं हमेशा सेफ साइड लेके चलता रहा और अच्छे लोग मिले और वह अच्छे से मेरा केनिया कंट्री निकला, युगांडा रवांडा ऐसे करके सब कंट्री से गया। डर हर जगह चाहे वो इंडिया हो या अफ्रीका हो, पर अच्छे लोग हर जगह होते हैं, जैसे मैं आपको बताओ चाहे आप कहीं जाओ शहर का एरिया जरा सा अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, वहाँ पे आपको डर होती है, पर गाँव में गाँव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो मुझे वहाँ पे अच्छे लोग मिले और अच्छा मेरा टाइम अफ्रीका दिन।
तो मोस्टली आप शहर में आप कितना टाइम गुजारते हो, ऐसा कुछ प्लान है कि ज़्यादातर आप रिमोट एरियाज़ में विलेजेस में रहते हैं?
एक्चुअली जाओ साइकिलिंग साइकिलिंग क्या होता है कि आप मोस्टली ऐसे ऐसे लोग चूज करते हो जहाँ पे आपको खाली रोड मिले, खाली एरिया मिले, क्योंकि वही आपको एक मेंटल पीस देता है और आपको घूमने में बहुत मज़ा आता है। शहर में मैं बहुत कम रहना पसंद करता हूँ, शहर है तो बहुत, अगर कोई फेमस शहर है लंदन हो गया या फिर बैंकॉक हो गया या फिर कोई ऐसा फेमस शहर है आपको कुछ देखने को आया तो आप मैं दो तीन दिन निकाल दूँगा, तो जैसे कि वहाँ पाँव है टाइम पाँव घूमने हो गए दो तीन दिन दो गए, पर मोस्टली मैं आपसे फटाफट निकलने की सोचूंगा क्योंकि वहाँ पर साइकिल नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वहाँ पे इतना क्राउड में नहीं रह पाऊंगा, कंपेरेटिवली बहुत एक्सपेंसिव भी होता है कभी कभी शहर में ना, पावर आपको तो जर्नी रहती है और आप गाँव में पूरा कंट्री साइड देख रहे हो, पूरा एक्सपीरियंस कर रहे हो, गाँव के लोगों से मिल रहे हो, शहर में आप शहर के लोगों से मिलते हो और शहर के लोग भी आपको वही बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, तो अगर आप कंट्री में जाना है तो आपको शहर गाँव व हर चीज़ देखना बहुत जरूरी है।
कोई भी ट्रैवल प्लान करने से पहले भाई क्या बजट भी डिसाइड कर लेते हो कि मेरे को पर डे का ये बजट रखना है कुछ ऐसा?
वो होता ही है जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको सब देखना ही पड़ता है कि हाँ आपका इस कंट्री में जा रहे हो कितना खर्चा आएगा, कितना आप यूजली कितने हॉस्टल्स कितना कितने में जाते हैं, तो आप वो भी अपने जो ऐप होते हैं बुकिंग डॉट कॉम या अगोडा से चेक करते हो, तो इसीलिए आप एक माइंड में आइडिया लेने चलते हो, वो जरूरी भी है।
तो आप तो वैसे भी मोस्टली आप कैंपिंग करते हो, लेकिन
मोस्टली कैंपिंग करा जब सिटीज़ में होना तो हमें मुझे हॉस्टल्स लेने ही पड़ते हैं।
तो अफ्रीका की जर्नी में आप एक कमाल के इन्फ्लुएंसर से मिले थे किली पॉल, जो कि सब जानते हैं, उनसे कैसे मुलाकात हुई आपकी वो जरा बताइए।
मैं बुरुंडी से तंजानिया जा रहा था तो मैं जो लोग मुझे देखते थे इस समय, मैंने मुझे बोला कि किली पॉल से मिलिए किली पॉल से मिलिए, इनकी वीडियोस क्योंकि बहुत समय सुबह सुबह वायरल थी तो लोग चाह रहे थे कि उसको जाने इनको देखें, तो उसमें मुझे हमारे लोग भी देखते तो उन्होंने मुझे बोला कि जाओ जाओ जाओ, तो मैंने कहा कौन है देखा मैंने देखा उनके बारे में, फिर जब मैं जा रहा था तो मेरे रास्ते में ही बॉर्डर में ही जो अभी कंट्री थी मलावी उसी के रास्ते में इनका घर था, उस रहिए मैं वहाँ पे जाया, मैंने उनके वहाँ पे गाँव में जाकर पूछा कि कहाँ पे है, तब आगे वहीं से उनसे मुलाकात हो गई।
तो सिंपल आप गए उनसे मुलाकात हो गई, और कैसे हम बंदी मिले कैसे हो?
बाकी था कि गया मैंने कुछ लोगों से बताया कहाँ रहते हैं कि उनका एड्रेस निकाल, फिर आगे वहाँ से निकला इजीली शाम्पू पहुँचा और आपको वेट किया और वो मिल गए थे।
तो कैसा कैसे रहते हैं वो क्लिप ऑल, कैसा उनका थोड़ा उनके बारे में थोड़ा बताइए क्लिप।
वो एक्चुअली मसाई ट्राइब है विच अफ्रीका वन ऑफ द खतरनाक ट्राइब में आ रहा है।
खतरनाक मतलब कैसे हो?
क्योंकि वो एकदम विलेजनेस में रहते हैं, जंगल में रहते हैं और जंगल में अपना खुद अपना खाना पीना खुद उगाते हैं, या फिर जो वो होते हैं उनकी जो कैटल्स होते हैं उन्हीं का दूध उन्हीं का खून का कुछ कुछ निकाल के उससे कुछ खाते पीते हैं, अपने ही कैटल्स को का कब मीट खाते हैं, मतलब ऐसी करके वो अपना जिंदगी पूरे विलेजनेस में निकालते हैं।
अच्छा
और बाकी वो दुकान पर और कम चीज़ें लेते हैं बहुत
अच्छा
बहुत, और मोस्टली वो जगह पर रहेंगे तो ऐसे पैसे मिलने में बड़ा अच्छा, उनका रहन सहन देखने में अच्छा लगा, और मोस्टली उनके घर मिट्टी लकड़ी के बने होते हैं और हर 2 साल में उनको दोबारा बनाना पड़ता है,
अच्छा
तो बड़ा अच्छा लगा, कोई डिफरेंट चीज़ देखने को मिली और मसाई ट्राइब को देखना जाने का मौका मिला।
तो वो
आपको पता है तंजानिया में अफ्रीका मोस्टली जो टूरिज्म है बहुत बड़ा एक उनका इकोनॉमी में साथ देता है, इवन तंजानिया में भी सेम ही है, तो अगर वहाँ के लोगों ने अभी सीख लिया है और सीखना ही पड़ता है हर बंदे हर इंसान को कि किस चीज़ से आपको फ़ायदा है, अगर आप उन्हीं को वेलकम नहीं करोगे तो आप आपकी कंट्री की इकोनॉमी या आपकी कंट्री जो आप जिससे आप जी रहे हो वो खत्म हो जाएगा। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो अफ्रीका हो।
तो जो मिस्टर पॉल और उनकी वाइफ, वो दोनों
एक्चुअली वो उनकी वाइफ नहीं है, नीमा और उनकी बहन है, स्टेप सिस्टर है, तो वो दोनों साथ में की वीडियो बातें में सारे लिए ये बोल रही।
अच्छा, गलत हुआ, इसको सो कट कर देंगे। तो क्यों उनके आपने उनके साथ कुछ कितना टाइम बिताया उन्होंने?
क्या तो शायद 5 घंटे था उनके साथ, मॉर्निंग गया था उनका, मैं ब्रेकफास्ट उनके साथ किया एंड मैं दिन में निकल गया।
तो वो सेलिब्रिटी स्टार कुछ है वहाँ के लोग उनको घेरते हैं, क्या है क्या सीन?
क्या जी वहाँ पे ऐसी जो भी इंडिया से उनको बहुत कंसिडर करते हैं, बट जो आते लोकल लोग उनके तो लोकल लोकल होता है, एक तरह वो नहीं बोलते हैं, पर एक ही जो गाँव गाँव बोलते हैं कि हाँ फेमस है ये वो है ये, बाकी जो इंडियन लोग उनको बहुत ज़्यादा फेमस, इंडियन की भी बहुत फेमस है।
तो प्रतिभा ने तो काफ़ी सारी बात करी, अभी हम बात करते हैं कि आपके जो प्रीवियस थे, अभी आपका क्या प्लान है और कहाँ कहाँ जाने वाले हो, कब शुरू करने वाले हो, बेसिकली क्या है आपका स्टोरी आगे की?
तो लास्ट 7 महीने पहले मैं था जापान में, मेरी जर्नी चल रही थी वही जो मैंने छोड़ी थी मलेशिया से आगे सिंगापुर से लंदन वाली, तो वो अभी पहुंची थी मेरी। लास्ट ईयर मैंने किया था सिंगापुर से जापान तक 5 कंट्रीज किए, उसके बाद फिर मुझे आना पड़ा था दोबारा से, क्योंकि मैंने राइट आर्म शोल्डर में कुछ दिक्कत आना भी थी, दर्द हो रहा था, तो 7 महीने से मैं रेस्ट में था इंडिया में, और अभी वही ज़्यादा सारे पेन सही नहीं हुआ है, पर मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करना टाइम और जर्नी में निकलना चाहता हूँ। शायद इस बार दर्द ज़्यादा रहा तो शायद मैं साइकिलिंग छोड़ के कुछ और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करूँगा, चाहे वो कुछ और भी रहे, चाहे वो बैक पैकिंग रहे या ई चेकिंग रहे या कुछ भी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रहे, क्योंकि हाथ में दर्द है हो जाएगा। बाकी अभी इस बार जो प्लान है, इस बार वही मैं जो रास्ता आज छोड़ा था उसको कंटिन्यू करूँगा, जापान से मैंने छोड़ा था लास्ट टाइम, तो उसकी अभी 2 पार्टी बची हैं मेरी, कोरिया साउथ कोरिया और ताइवान, तो अभी इन दोनों कंट्री का स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों आयरलैंड कंट्रीज़ हैं और ज़्यादातर कंपेटिटिव खर्चा ज़्यादा होता है आयरलैंड कंट्रीज़ में फ्लाई करना फ्लाई उतरना, तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ इस बार चाइना से, तो चाइना फ्लाई करूँगा मैं अगस्त 15 तक, और वहाँ से जर्नी स्टार्ट करके पूरा प्रिपेयर करके सामान साइकिल वगैरह, फिर मैं स्टार्ट करूँगा सेंट्रल एशिया की जर्नी, तो वैसे क्रोड से होते हुए आगे जाऊँगा टर्की तक। तो इस बार मेरा 13 कंट्रीज़ का प्लान है और 1 साल में आई होप इसको फिनिश कर दूँगा, हर कंट्री में 1 महीना निपटा के।
19 वो 13 ये,
23 पहले और 13 ये,
सॉरी 23 पहले और 13 ये, और 198 टोटल कंट्रीज आपने करनी है। काफ़ी लंबा सफ़र है, लेकिन मैं होप करता हूँ बहुत जल्दी आप इस सफ़र को तय करते चले जाएंगे। तो भाई सबसे पहले मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो लोग अभी ट्रैवल प्लान करना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं वर्ल्ड घूमें, साइकिल से जाएँ, हमारा भी कम खर्चा हो, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स उनको बताइए ताकि वो भी अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर सकें और अपना प्लान, अपनी जर्नी शुरू कर सकें। तो क्या आप उनके लिए क्या सजेशन, क्या टिप्स, क्या देना चाहेंगे?
मैं यही बोलूँगा कि जो भी बच्चे लोग भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं इंडिया इंडिया से बाहर, तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए अपने सिटी से, अपना सिटी देखिए, उसके बाद अपना स्टेट देखिए, उसके बाद आसपास की जगह घूमने के बाद फिर अपना पूरा इंडिया घूमिए। जब आप पूरा इंडिया घूम लोगे तो आपके अंदर कोई मन आ जाएगा या आपको वो चीज़ आप छोटी छोटी चीज़ सीख लोगे जो आपको बाहर देशों में ट्रैवलिंग में चाहिए होगी।
बहुत अच्छी टिप है वैसे कि पहले आप बेसिक शुरू कीजिए, जहाँ जिस एनवायरनमेंट को जानते हैं वहाँ पर आप कीजिए, फिर देन धीरे धीरे अपना हॉराइज़न बढ़ाते चलिए, एंड देन ऑन फिर इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में। इसके साथ साथ कुछ 3 ऐसी टिप्स बताइए, बेसिक टिप्स तो आप बता ही चुके हो, मैं चाहता हूँ कि आप ना कुछ सेफ्टी को लेकर ज़रूर उन्हें बताएं कि बाई चांस कोई जा रहा है तो सेफ्टी के मेजर को कैसे करें कि भाई सेफ रहे, चाहे वो क्राइम से हो, चाहे वो लूटपाट से हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, ना सेफ्टी किसी भी तरह की सेफ्टी होती है ना, मेरी हेल्थ भी ठीक रहनी चाहिए भाई और मेरा पैसा भी सेफ रहना चाहिए, मेरी जान मान का भी हमला नहीं होना चाहिए, क्राइम वाइम में लूट पार्टी हो गई कुछ, सेफ्टी के तरीके से कैसे कोई ध्यान रखे?
मैं इसके बारे में यही बोलूँगा कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो आप चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, तो आपको इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो जो ट्रैवलिंग के बेसिक एथिक्स होती हैं जब आप ट्रैवल करते हैं, तो मोस्टली चाहे आप साइकिल से कर रहे हो, चाहे आप बैक पैकिंग कर रहे हो, चाहे आप कार किससे भी कर रहे हो, तो कोशिश यही कीजिए कि आप मॉर्निंग सनराइज़ को स्टार्ट करो और इवनिंग में आफ्टरनून में सनसेट से पहले इसको रोक दो, सनसेट से पहले आप ऐसा लोकेशन ढूंढ लो जहाँ पे आप सेफ हो जाओ, ये ना हो कि आप धीरे तक चलते रह रहे हो आप लोकेशन ढूंढ रहे हो, क्योंकि मोस्टली अंधेरे में ज़्यादा टाइम होते हैं, लोग आपको देखते हैं और आप अभी भी हाईवे में हो तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको थेफ्ट होने के। वही यही बोलूँगा बेसिक, यही जो आप बेसिक रूल्स है उनको फॉलो कीजिए, और रात को बहुत देर नाइट बाहर मत रहिए, नई लोकेशन में मत घूमिए ओपन, जब आप सेफ लोकेशन वहाँ पर रहिए, तो ये कुछ चीज़ें आप इंडिया को इंडिया से बाहर रही हो तो आपको ही फॉलो करोगे तो आप सेफ रहोगे।
बेसिकली सेफ्टी का जो नॉर्म्स वगैरह वो उसको हम ध्यान रखें सबसे पहले जाए।
हाँ नहीं माइंड कि कभी किसी कंट्री पर होते हो तो आप किसी भी लैंग्वेज नहीं करना, चाहे वो आपका दोस्त इंडियन ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई दूसरे कंट्री का भी ना हो, कभी कभी क्या होता है कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं जब मलेशिया में था तो वहाँ पे एक इंडियन भाई मिल गया मुझे, मुझे बहुत लंबे टाइम बाद 7 महीने बाद जो इंडियन मिल रहा था, मुझे बड़ा खुश हुआ कि यार इंडियन मिल गया, बड़ा खुश हुआ और कि इंडियन, तो उसने मैं अच्छे से बात की सबको अच्छे से, और 3-4 दिन साथ आए, सेम हॉस्टल में रूम शेयर किया, 3-4 लोग कम हॉस्टल शेयर कर रहे थे, तो इतना अच्छा बॉन्डिंग होने का। मैंने उस भाई को सब बता दिया कि मेरे पास इतना डॉलर्स रखे हैं, इतना मैं प्लान कर रहा हूँ, ये लेने का प्लान कर रहा हूँ, यहाँ जाने का प्लान कर रहा हूँ। तो जब इधर मैं नहाने गया, तो जैसे ही मैं रूम से बाहर गया और नहाने गया, तो आज तक मेरा जो मेरे बैग में जो डॉलर्स रखे थे, जो सामान रखा था, मैंने उसको बताया था, वो गायब हो जाता पूरा, और वो बंदा भी उसके बाद गायब हो गया। तो कभी कभी आपको इतना ब्लाइंड धोखा नहीं करना अपने इंडियंस पे, अपने अपने खास लोगों पे, क्योंकि कभी कभी वही आपको धोखा दे दे जाते हैं।
बेसिकली ये। और
मैंने
कितने दिन आप रहे थे उसके साथ में?
मैं 3 से 4 दिन था उस बंदे के साथ में, और रहा कुछ टाइम स्पेंड किया, और आउटकम अच्छा नहीं रहा।
कंप्लेंट वगैरह करी आपने
तो
स्टाफ
मैंने
पे?
कहा मैं नहीं की, क्योंकि वो पुलिस को कंप्लेंट करना थे, वही मांगते हैं कि पूरे प्रूफ दो और भी चीज़ दो, प्रूफ मैं उस था नहीं पड़ेगा कि वो बंदा भाग गया था उस हॉस्टल से, वापस आया नहीं, कोई फ़ोन कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, तो मोस्टली वही था। और बाद में मैंने कॉल भी किया, आ जा भाई, तो फिर बहुत सारा चीज़ हमने कंप्लेन नहीं की इस बारे में।
और आप एक चीज़ आप बता रहे थे कि जैसे आप जब आप ट्रैवल करते हो तो गांव के इलाकों में जब जाते हो, विलेज में, वहाँ पे लोग काफ़ी लेकिन आपको ट्रस्ट करते हैं और आपको मौका भी देते हैं अपने घर पर रुकने के
नहीं
लिए।
यही तो आप कुछ जानते हैं कि शहर में जब लोग होते हैं, तो शहर में 100 लोग अलग अलग जगह से आते शहर में बसते हैं, तो वो खुद वहाँ पे बिजनेस नहीं है, पैसे के लिए आते हैं शहर में, और 24-24 तारीख बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग डरते हैं किसी भी नए बंदे को होस्ट करने से। हाँ, तो शहर में उतना आपको ऐसा लोग नहीं मिल पाएंगे, फैमिली लोग जितना आपको गाँव में मिलेंगे। गाँव में तो ऑलरेडी लोग गाँव में खेती कर रहे हैं, उनका कुछ होता नहीं है चोरी के लिए ऐसा कुछ नहीं, तो वो दिल खोल भी लोग को इन्वाइट करते हैं कि आप आओ हमारे, देखो, तो वो बिल्कुल बिल्कुल बिना किसी टेंशन के होते हैं। शहर में लोग बहुत टेंशन में होते हैं, अरे यार ये बंदा क्या होगा कैसा होगा, मेरे तरह पैसा कमाया चोरी कर लेगा ऐसा, तो शहर में वो सेम वो नहीं मिल पाती है हॉस्पिटैलिटी।
और जब पूरा वर्ल्ड ट्रैवल आपने किया तो आपको एज अ पर्सनैलिटी में आपको क्या बदलाव आया कि यार ये मेरे अंदर एक ऐसा चेंज आया जिसको मैं एडवोकेट करना चाहूँगा सबके सामने कि भाई यार आपको करना चाहिए ट्रैवल?
मैं ये बोलूँगा कि जब मैं स्कूल में था, मैं बड़ा चेपता था स्कूल से बाहर में, किसी नए बंदे से, अमेरिकन बंदे से या कोई फॉरेन बंदे से बात करने, बहुत सोचता था कि कम नहीं करो मैंने, पर जब ट्रैवल करते हो तो आप जो आपके लोग पढ़ने जा रहे हो, तो आप रैंडम कोई बंदा मिल जाए आपसे बात करने में कभी नहीं जेप हो गए, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज मेरे अंदर आया है ट्रैवलिंग करने के बाद। मतलब आप पीछे मैं जो डर होते हैं वो होते हैं, पर यकीन जेपता नहीं हूँ किसी से, किसी भी जेपता नहीं हूँ, पर एक खुल के बात करता हूँ। और मैं हर एक पेरेंट्स पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा कि जो भी देख रहे हैं, कि अपने बच्चे को हर साल में एक फील्ड ट्रिप, एक आउटडोर ट्रिप या एक फॉरेन ट्रिप पक्का कराओ। पढ़ाई से पढ़ाई पर देखिए, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बोलता हूँ, पर उसके साथ ट्रैवलिंग एक ऐसा शिक्षा है जो बच्चे को मानसिक से लेके हर एक जगह खोलता है।
आप लेकिन जैसे आपने बोला ठीक है हर बंदा इंटरनेशनल ट्रिप तो अफोर्ड नहीं कर सकता, बट आपने इंडिया में तो कर ही सकते हैं
इंडिया में
आउटडोर, जैसे आउटडोर आप बोल रहे हैं आउटडोर
आउटडोर
ट्रिप।
एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कैंपिंग वगैरह, या फिर जहाँ पे आप ऐसे एग्जीबिशन होते हैं, ऐसे बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे चलता है कि बंदा खुलता है, देखता है, ऐसा देखोगे नहीं अगर नीचे जानोगे नहीं उसे निकलोगे नहीं, तो आप कैसे आपका ड्रीम बनेंगे, कैसे आपको गोल बनेंगे।
तो प्रदीप भाई काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करने में, और आप उत्तराखंड के प्राइड हैं, और मैं होप करता हूँ कि आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो और सपोर्ट मिले आपको हर जगह से। तो अभी आप कुछ अपना नया चैनल भी शुरू करने वाले हैं मेरे ख्याल से?
ये तो इस बार मैं नई जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ चाइना से लेकर सिल्क रोड होते हुए यूरोप तक का, उसमें मैं एक बार अपना पूरा फ्रेश एक नए चैनल राना ऑन वर्ल्ड टूर में यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरी यानी शेयर करूँगा अपनी इन्फॉर्मेशन से।
तो हम सभी से बोलेंगे उसको फॉलो करो, और ऑफकोर्स आपको तो वैसे ही बहुत लोग जानते हैं, और आप इस बार हो सके इस बार हम प्रे करते हैं कि आपको ऑल ओवर वर्ल्ड से भी ज़्यादा नो ट्रैफिक मिले, लोग देखें फॉलो करें। तो प्रदीप कैसा लगा पॉडकास्ट में आने के बाद में, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैंने सुना ये आपका पहला पॉडकास्ट है, तो कैसा लगा आपको पॉडकास्ट करके, कैसा मज़ा आया, कैसा अलग लगा, क्या चीज़ था, कैसा एक्सपीरियंस था?
मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपनी मैं जर्नी शेयर कर पाया लोगों तक, ताकि लोग कुछ सीख पाए और मुझसे इंस्पायर कर पाए, और बाकी अपना लाइफ में कुछ ड्रीम देख पाए और एक गोल को फोकस करें और आगे बढ़े लाइफ में।
प्रदीप भाई बहुत बहुत थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में और काफ़ी कुछ जानने को मिला। और क्योंकि मैं खुद एक ट्रैवल चैनल चलाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें हम लोगों को बताएं कि वो ट्रैवलिंग कैसे करें। तो यहाँ से उनको ज़रूर एक साइकिल के थ्रू कैसे आपने वर्ल्ड टूर का प्लान किया, कैसे आपने सारी चीज़ें करी, वहाँ से उनको एक मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। और बस मैं